ओम शांति। 28वीं वार्षिक स्पार्क मीटिंग का आज तीसरा दिन है। हम सभी ब्लेसिंग से भरपूर हो रहे हैं। हमारे बीच में हमारे भाई जी भी हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हैं। हम सभी स्पार्कलर्स के बीच, लकी स्टार्स के बीच में बाप समान, सूर्य समान, चमकती हुई स्थिति वाले समानधारी परम आदरणीय सूर्य भाई जी हमारे सम्मुख है। तो हम सभी एक हाथ की ताली से और खड़े होकर के भाई जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई जी आपका स्वागत है, बैठ जाइए सभी। तो भाई जी ने लाखों भाई बहनों को सुमान की प्रैक्टिस करवाकर जीवन परिवर्तित कर दिया है, निर्विघ्न बना दिया है। चाहे बीके हो या नॉन बीके, सभी की पसंद हमारे भाई जी हैं। आपकी एक सेकंड की दृष्टि और एक मिनट के वरदानी बोल ने कईयों के जीवन को खुशियों से भर दिया है। चाहे सम्मुख मिलने से, फोन के द्वारा या यूट्यूब के माध्यम से लाखों भाई बहने लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे हमारे मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सतगुरु के प्रैक्टिकल स्वरूप परम श्रद्धे सूर्य भाई जी हमें सेकेंड जो हमारा प्रोजेक्ट है, समय की पुकार हो जाओ तैयार, इस पर हमें गाइड करेंगे आदरणीय भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति। तैयार तो आप हैं ही, हैं या नहीं, या हो जाओ। केवल खराब समय की चर्चा हम नहीं करेंगे, सुंदर समय भी आ रहा है। मैं सुंदर समय सतयुग को नहीं कह रहा हूं, उससे पहले कौन सा है, प्रत्यक्षता का, जय जयकार का, जिसकी कल्पना भी ब्राह्मणों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बाबा सुनाया करते थे 69 में जब अव्यक्त हुए थे कि सारे भक्ति मार्ग की स्थापना भी यहीं हो जाएगी। कौन किसका भक्त है, कौन किसकी प्रजा है, वो भी यहीं आउट हो जाएगा। कौन किसकी पूजा करेगा, भक्ति में पूजा के विधि विधान क्या होंगे, सब यहीं निश्चित हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा रोल हमारे सामने प्ले होने जा रहा है। पहले मैं आप सभी को कहूंगा एक बहुत सुंदर बात है, उस जय जयकार से पहले जो दूसरा रूप संसार का होने जा रहा है, उसको ज्यादा बताया जाता है तो घबरा जाते हैं सुनने वाले। इसलिए मैं सोच के आया हूं कि उसको ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम अच्छी बातों की चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से घबराहट की बात है, मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा, वो आप सभी जानते हैं। कभी बाबा ने एक अव्यक्त मुरली पूरी यही है कि 8 तरह के पेपर आएंगे। मैं सुना नहीं रहा हूं इसलिए डायरी न खोलो अपनी। इम्पोर्टेंट बात जो मुझे कहनी है और सबको करनी है, अगले 10-12 वर्षों में ये जो परिवर्तन का समय चलेगा, इसमें मेरा रोल क्या हो, मेरा पार्ट क्या हो। आज बाबा ने हम सबको हीरो एक्टर कहा, वरदान में था, याद होगा आपको। विनाश काल और परिवर्तन का काल, आपदाओं विपदाओं का काल, उसमें मेरा रोल ये होगा। फिक्स कर लेंगे, आज ही कर लें तो बहुत अच्छा। रोज उसको पढ़ना है, लिख लेंगे, रोज पढ़ेंगे एक बार, और उसको अपना लक्ष्य बनाकर वैसा ही पुरुषार्थ करेंगे। मैं एक दो पाठ जो हम सबको बजाने हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। आप सब जानते हैं दो धर्मों की आत्माएं ऐसी हैं जो केवल फरिश्तों को मानते हैं, मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म। भगवान का तो केवल नाम है, सब जगह पहुंच तो वहां तक नहीं है। अब इन आत्माओं का भी कल्याण हमें करना है, इनको भी एक बार ऐसी स्थिति तक लाना है कि ये भी कहें मेरा बाबा। क्योंकि जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक उन्हें मुक्ति का वर्षा नहीं मिलेगा। भगवान मेरा है, अल्लाह मेरा है, गॉड फादर इज माई फादर, गॉड फादर नहीं माई फादर, जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे मुक्ति का वर्षा उन्हें नहीं मिलेगा। तो एक पार्ट जो हमारा होना है, हम में से कई आत्माएं ऊपर फरिश्ते रूप में सबको दिखाई देंगी। भारत से भी ज्यादा इस स्वरूप को ये दो धर्मों की आत्माएं देखेंगी। कैसा होगा कि एक बहुत डिवाइन फरिश्ता आकाश में प्रकट हुआ, उससे सुनहरी किरणें फैल रही हैं, तेज फैल रहा है, उसका तेज से सारा आकाश भी सुनहरा हो गया है, उसकी दृष्टि से नीचे किरणें फैल रही हैं, फरिश्ते प्रकट हो गए हैं आकाश में, बस जो हम कहेंगे वो वही मानेंगे। एक पार्ट सोच लो, आप में से कौन ये पार्ट प्ले करना चाहेंगे? नहीं, हाथ नहीं उठवाऊंगा मैं। सबसे छोटी बच्ची ने भी हाथ उठाया, बैठी है। किस पार्ट का सबसे छोटा स्टूडेंट होना चाहिए वो? सोच लें, कौन बन सकते हैं फरिश्ते? दूसरा पार्ट होगा जो बाबा हम सबको बहुत कहते आए हैं, लेकिन हम में से शायद ही कोई उस स्थिति तक पहुंचा है। भक्तों के दुखों की पुकार सुनाई दे, और केवल पुकार सुनना ही नहीं है, उन्हें सकास देकर उनके दुख हर लेने हैं। दूसरा पार्ट ये होगा जैसे दिखाया है शास्त्रों में, विष्णु शैया पे विराजमान है, भक्त ने पुकारा है नीचे रक्षा करो, तुरंत टच हुआ है और उसने हाथ ऐसे किया, सकास किरणें निकल कर भक्त को पहुंची हैं और उसकी रक्षा हो गई। बाबा क्या करते, तुम्हारे भक्तों को पता तुमने क्या क्या किया? तुम्हें नहीं पता अब तक? गज और ग्राह के युद्ध में भी दिखाते हैं, गज ने हाथी ने याद किया, आवाज पहुंची, सुदर्शन चक्र छोड़ा, मगर को मार दिया। ये सब रोल भी यहीं चलने हैं। जितने भी पुराणों में बातें लिखी हैं वो सब यहाँ घटित होंगी इस काल में। जिन्होंने अपने जीवन को बहुत डिवाइन बनाया है, जिन्होंने अपनी प्योरिटी को बहुत नेचुरल स्थिति तक पहुंचा दिया है, जो योगयुक्त और स्मृति स्वरूप हो गए होंगे, उनके द्वारा ये पाठ चलेंगे। पहले मैं ये अच्छे पाठ की चर्चाएं आपके सामने कर रहा हूं। एक बार की बात है, बहुत पहले की, 1973, दिल्ली में पहला प्रोग्राम हुआ बड़ा, यज्ञ का सबसे पहला मकान पांडव भवन दिल्ली खरीदा गया। बहुत बड़ी बात थी, यज्ञ में इतना बड़ा घर मिला किसी को दिल्ली में, एक नेशनल मेले का आयोजन किया गया। नेशनल था वो, इंटरनेशनल नहीं, पहला मेला भारत में। तो बाबा आए, अव्यक्त बाप दादा, तब केवल हिस्ट्री होल था। बाबा ने कहा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, सेवा होगी, उसमें समाधान स्वरूप बनकर रहना होगा। मुझे याद रहती हो बात। और जो रहेंगे उन्हें बाबा प्राइज देंगे। तो आगे आगे भाई बैठे थे, स्त्री हॉल तो छोटा ही, आगे बैठते थे। किसने कहा, बाबा गोल्ड मेडल देंगे क्या आप? तो बाबा ने कहा, गोल्ड मेडल क्या चीज है, जब तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी तो जिन देवियों के मंदिरों में आज भी चढ़ावा चढ़ता है, सारे संसार की धन संपदा तुम्हारे चरणों में आ जाएगी। यही सब थे बाबा के। तो जय जयकार में ये बहुत बड़ा रोल होगा। बाबा ने कहा, मुझे वो सब बातें याद रहती हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी यहां कभी वहां, भारत की बात करते थे बाबा तब ज्यादा। अलग अलग तरह के साक्षात्कार लोगों को होंगे, जय जयकार होगी भारत में और संसार में, आवाज होगी, हमारे इस देव देवियां प्रकट हो गए हैं। तो देवकुल की करोड़ों आत्माएं भागी चली आएंगे, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। ज्ञान भी बाबा ने कहा था, 5 मिनट में योग सिखा दोगे तुम आत्मा, ये शिव बाबा लगाओ ऐसे योग, 5 मिनट का कोर्स, कहीं आधे घंटे का कोर्स। तो ये जय जयकार के रोल बहुत चलेंगे आने वाले समय में। कहीं कोई इस देवी का साक्षात्कार होगा, कहीं दूसरी का, कहीं तीसरी का, कहीं चौथी का, पांचवी का, इस देवों का भी, तो जय जयकार प्रारंभ हो जाएगी। आप सोच लें, मेरा इस जय जयकार में क्या पार्ट होगा? होना चाहिए नहीं, फिक्स कर दो, मेरा पार्ट ये होगा। मैं सेंटर की छत पे खड़ी होंगी और दूर दूर तक लोग मुझे दुर्गा के रूप में देखेंगे। किसी को स्वप्न आएंगे, किसी को साक्षात्कार होंगे, ढूंढते ढूंढते लोग फटाफट पहुंच जाएंगे। ये वंडरफुल खेल जिसमें बाबा कहते थे, कभी तो कहा मुंबई से और आबू तक भी क्यों लग जाएगी, कभी कहा आबू रोड से ऊपर तक क्यों लगेगी। बहुत ही अच्छी स्थिति वाले, जो जिस स्वरूप के स्मृति स्वरूप होंगे, जो जिस स्वरूप के ज्यादा स्मृति स्वरूप होंगे, वही स्वरूप दूसरों को उनका दिखाई देगा। अभी बाबा तपस्या करा रहा है, प्रैक्टिस करा रहा है, दिव्य दृष्टि की चाबी उसके पास है। जब वो शुरू करेगा तो नहीं, वो किसी से भी साक्षात्कार करा देगा, जो आत्माएं योग्य बनी होंगी उनके द्वारा साक्षात्कार होंगे। पहली चीज उस योग्यता में, जो साक्षी दृष्टा होंगे वही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात साकार मुरली से है, जो संपूर्ण पावन बन जाएंगे उनके दूसरों को साक्षात्कार होंगे। तीसरी बात, जो बाप समान हो जाएंगे उनके द्वारा साक्षात्कार होंगे। और जो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे, जो मैंने अभी कहा, जिस स्वरूप की स्मृति ज्यादा रही जीवन में वही स्वरूप बन जाएगा। जो व्यर्थ से मुक्त हैं, जो किसी भी मैंपन तेरे मेरे से मुक्त है, जो इच्छाओं से परे हो गए वो साक्षात्कार मूर्त हो जाएंगे। बाबा व्यक्त मूल्यों में बहुत गहरी गहरी बातें सुनाते हैं, पीछे सुनाया याद आ जाएगा आपको। मुझे बहुत सुंदर लगी वो बात, इच्छा मात्रम अविद्या हो जाओ तुम दाता हो, याद करो तुम्हारी जड़ मूर्तियां भी दाता हैं, तुम तो चैतन्य हो, दाता हो, लेने की कोई इच्छा नहीं। और ये इतनी सूक्ष्म बात है, जिसको लेने की इच्छा नहीं होती उसके पास सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। अब हम दूसरे पहलू की ओर चलें, जो संसार में हो रहा है। एक बाह्य रूप दिखाई दे रहा है, लोग डरे हुए थर्ड वर्ल्ड वार न हो जाए, लेकिन वो अभी तो नहीं होगी, स्थापना का कार्य लगभग समाप्ति पर आ जाए तब होगी। लेकिन धमकियां तो चल रही हैं, टेंशन तो देशों में बढ़ती जाएगी। यूएन कितना सफल है आप सब देख रहे हैं, यूएनओ कितना सफल है, बहुत कम उसका इफेक्ट है। संसार में जो कुछ बढ़ रहा है, बाबा ने बहुत पहले एक चीज कही थी, हम उसकी ओर चलना चाहेंगे। आप, मैंने आपको कह दिया, डरने की बात नहीं है, तैयारी करने की बात है। बड़े बड़े साइक्लोन का डिक्लेयर कर दिया जाता है, तैयारी करती है ना सरकार भी, और लोगों को वहां से निकाल के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है। तो कुछ भी डरने की बात हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम तो सबको निर्भय बनाने वाले हैं। तो बाबा ने कहा था, जब विनाश का समय समीप आएगा, सभी के विकर्म जागृत हो जाएंगे, विकार जागृत हो जाएंगे। विकारों को अगर अंश सहित वंश सहित नष्ट नहीं किया होगा तो वो जागृत हो जाएंगे। ये बात हमने कोरोना काल में बहुत देखी, टीचर बहने बहुत बैठी हैं, आप सब ने अनुभव किया है। बहुत सारे भाई बहने ज्ञान छोड़ के चले गए, नए आने वाले ज्यादा थे लेकिन छोड़ने वाले भी थे, क्योंकि घरों में रहे जो विकार दबे हुए थे वो जागृत हो गए। विकर्म जागृत हो जाएंगे, जो सोने नहीं देंगे। इसलिए संसार में एक समस्या बढ़ती ही जा रही है, अनिद्रा, इंसोम्निया बढ़ती ही जा रही है। और जब ये बहुत बढ़ जाएगी तो दवाइयां भी कहां से मिलेंगी और न दवाइयां काम करेंगी। अभी भी लोग बताते हैं दवाइयां काम नहीं करती, उसका एक ही कारण होता है, विकर्म ज्यादा एक्टिव हो गए हैं ब्रेन में। ब्रेन में, आप कहेंगे ब्रेन में भी विकर्म होते हैं क्या? आत्मा में तो उनका सूक्ष्म अंश रिकॉर्ड होता है, पर स्थूल रूप उनका ब्रेन में ही रहता है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि ब्रेन तो मृत्यु के बाद जला दिया जाता है, ध्यान से सुन लेंगे, सीक्रेट है इस सृष्टि के। ये सत्य है कि ब्रेन मृत्यु के बाद जला दिया जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा बाहर जाती है। सूक्ष्म शरीर में वो सब चीजें हैं जो स्थूल शरीर में हैं, तो सूक्ष्म शरीर में ब्रेन भी रहता है। और आप सब ने एक बात तो सुनी होगी, नहीं सुनी तो सुन ले, मनोवैज्ञानिकों ने मन को तीन हिस्सों में बांट दिया, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अचेतन मन, अचेतन जो चेतन नहीं है, अर्ध चेतन जिसे सबकॉन्शियस माइंड कह दिया, अवचेतन मन कह दिया, जिसके द्वारा हमने बहुत सारे प्रयोग कराए, बाबा की मुरलियों से ली बहुत सारी बातें जो बाबा सुनाते रहे हैं। बाबा ने ये शब्द नहीं बोला पर अंतर्मन तो बाबा बोलते हैं। इस अर्ध चेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को अंतर्मन भी कहते हैं। अचेतन मन, उसमें ही सभी कर्म सतयुग से लेकर कलयुग तक के सभी भरे रहते हैं। वो जागृत होने का समय चल रहा है। स्वमान से, पांच स्वरूपों के अभ्यास से देवयुग के संस्कार जग जाते हैं और योग बल से, द्वापर से जो संस्कार विकर्म जगे रहते हैं उसको योग बल से नष्ट किया जाता है। जो नष्ट नहीं कर पाते या नहीं करते, अब उनको काफी तकलीफ होगी, हो रही है। ब्रेन में ये कर्म हाइपर एक्टिव होते जा रहे हैं, इसलिए किसी को बहुत ज्यादा मानसिक रोग, किसी को बहुत ज्यादा डर, किसी की बहुत सारी बीमारियां, किसी को विकार तंग कर रहे हैं, किसी को नींद नहीं आ रही है। हमें स्वयं को बचाना भी है इन चीजों से और इन आत्माओं को मदद भी करनी है। एक और विघ्न संसार में बढ़ता जा रहा है क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब ज्यादा है दूसरों के साथ, भटकती आत्माओं का प्रकोप, ये बाबा ने बता दिया था उन आठ बातों में। भटकती आत्माएं बहुत परेशान करेंगी, करेंगी उनको ही। तीन बातें मैं कह रहा हूं आपको जो आज तक अनुभव में आई हैं, क्योंकि मेरे पास भी लोग आते रहते हैं, कई तो ऐसे ही आते हैं। एक माता आई कल ही, भाई जी मेरे में भूत प्रवेश कर लिया है, निकाल दो इसे। अरे मैंने कहा मैं थोड़े भूतनाथ हूँ, निकाल, मैं तो वही विधि बता देता हूँ, करना तो आपको है। जिनका मन बहुत कमजोर है उन पर इन आत्माओं का इफेक्ट होता है। जिनके पास इम्प्योरिटी ज्यादा होती है उन पर इफेक्ट होता है। और जिनका तीसरा है, जिनका इन सब से हिसाब किताब हो कर्मों का। सभी से हिसाब किताब की बात नहीं होती, कुछ केस ऐसे आते हैं जिनसे हिसाब किताब है, उन पर ये आत्मा जल्दी इफेक्ट कर देती हैं। तो हमें इन सब से भी अपने को बचाना है, इसलिए क्या करेंगे, चार तो आपके पास आएंगे और अभ्यास भी अच्छे होंगे। अपने चारों ओर मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास से पावरफुल आभा मंडल बनाना है रोज दो बार। ओरा योग में बैठो, सवेरे ही बना दो तो योग भी अच्छा लगेगा, उठते ही सात बार याद कर ले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और लाल किरणें फैलकर चारों ओर घेरा बना रही हैं। ओरा आभा मंडल प्रभा मंडल दो नाम हिंदी के हैं। इससे हम सेफ रहेंगे। और बहुत सारी आत्माएं ऐसी भी आती हैं जिन्हें हमें मुक्ति देनी ही होगी। आज ही आया एक कुमार, मेरे साथ एक आत्मा लगी हुई है, अच्छी है। मैंने कहा फिर लगी क्यों है, कहती है मुझे तुम्हारे द्वारा ही मुक्त होना है। तो मैंने उसे कहा फिर करो ना अभ्यास, उसको अभ्यास सिखाए। वो अच्छी आत्मा है, कष्ट नहीं देती है, उसे साथ रहती है। कहा जन सरोवर में सेवा में आया हूँ, मुरली भी मेरे साथ सुनती है, योग भी मेरे साथ लगाती है। ये वंडरफुल बातें आती है ना। तो मैंने कहा अब तुम्हारे घर में ही, तुम्हारे शरीर में ही सेवा आ गई है तुम्हारे सामने, 21 दिन का योग कर दो, ये आत्मा मुक्त हो। ऐसी बहुत आत्माएं मुक्त हुई हैं और बहनों को भाइयों को धन्यवाद देकर गई हैं। सेंटरों में बहुत आत्माएं आती हैं, आजकल ज्यादा आती हैं, डरेंगी नहीं बहने, शांति लेने भी आती हैं, आती हैं। मुझे भी एक ने बताया था कि तुम्हारे जो वो ज्ञान में नहीं है लेकिन अच्छे तांत्रिक हैं, अच्छे जो होते हैं ना, अच्छे काम करने वाले, कहा तुम्हारे सभी सेंटरों के ऊपर बहुत बहुत सारी आत्माएं घूमती रहती हैं क्योंकि वहां के शांति के वाइब्रेशंस इन्हें बहुत खींचते हैं, वहीं चली जाती हैं। अब मैंने डरे ये देख के, डरेंगे नहीं, सभी आत्माएं कोई कष्टदायी नहीं होती हैं, कष्टदायी थोड़े होते हैं, शांति इन सबको आकर्षित करती है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। इसलिए सेंटर्स को पीस हाउस बना देना है। अब समय आ गया है हमारी एनर्जी व्यर्थ में, बातों में, तेरे मेरे में, ईर्षा द्वेष में खर्च न हो जाए, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं अपने अंदर, ये बात गुंजाते रहना चाहिए, मुझे बड़े बड़े काम बाबा के करने हैं। बड़े बड़े काम वही कर सकेंगे जिनकी स्थिति बहुत बड़ी होगी। इसलिए अपने से बात करके अपने को मुक्त करते चलना है। मुक्त किन किन से मुक्त करना आप सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जहां भी हमारी एनर्जी जा रही हो, वेस्ट हो रहा हो, संकल्प विशेष रूप से वहां से अपने को छुड़ा लो। उस दिन मैंने बताया था, एक वीसी आए थे ऊपर, 20 आए थे एक मलावी देश के, उसने अनुभव सुनाया। देखो लोग पढ़े लिखे कैसे गहन बातें कैच कर लेते हैं, मैं तो उससे ये देख रहा था, फिर बाद में मुझे मिला, कहा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का हर भाई बहन सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ा हुआ है। इंग्लिश शब्द बोला, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी शिव बाबा है, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ा हुआ है यहाँ का हर व्यक्ति। तो बहुत बड़ी चीज हमारे पास है, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान, उससे सारी शक्तियां ले लें ताकि हम भी उस जैसे शक्तिशाली बनकर संसार का कल्याण कर सकें। मैं आपको ये संकल्प दे रहा हूं, बहुत भाई बहने हैं, मुक्त कर दो अपने को, मुक्त करो, मुक्त करो, और संसार की आत्माओं को तब मुक्त कर पाएंगे। खुद नहीं मुक्त होंगे तो हमारे पास इतनी पावर ही नहीं होगी कि हम दूसरों को मदद कर सकें। जैसे मैं एक चीज पहले हंसी में कहा करता था, मुझे पता था ये होने जा रहा है, अब रियल रूप में वो कहता हूं कि जहां से भी आप आए हैं, जिस सिटी टाउन में आप रहते हैं, समय आ गया है आधे लोग रात को सो नहीं पाएंगे, आधी पॉपुलेशन शायद रात जगेगी। आपको सकाश देकर उन्हें सुलाना होगा। मान लो मैं छोटी सी बात करूं, किसी टाउन की आबादी 1 लाख है, 50,000 सोएंगे नहीं, और जब वो सोएंगे नहीं तो इस देवियों को सोने देंगे? पुकारेंगे, चिल्लाएंगे, कहां सो गई हो तुम भी, और जगा देंगे। इससे पहले वो हमें जगाएं, हम ही उन्हें सुला दें। पूर्वज बनना होगा, लंबे काल का अभ्यास, मैं पूर्वज हूं, इस देव देवी हूं। तो हम जुड़ जाते हैं बहुत आत्माओं से, हमारे वाइब्रेशंस उन तक पहुंचने लगते हैं। बहुत अच्छे अभ्यास की जरूरत होगी, भय संसार को खाने लगेगा। आपने एक तो उसका देख लिया, लोग तो कहते थे तो ट्रेलर है, ट्रेलर कहते हैं फिल्मों से पहले, मैं तो वही फिल्में देखी नहीं ना कभी सुनी, ट्रेलर है ये तो, असली सीन तो आने वाले हैं। कितना भय पैदा हो गया था कोरोना का, छोटे से वायरस ने इतने लंबे चौड़े आदमी को डरा दिया, सरकारों को भयभीत कर दिया, डॉक्टरों को भयभीत कर दिया। ये भय संसार में बहुत बढ़ेगा, हमें वाइब्रेशंस देकर सभी के भय को भी समाप्त करना होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट काम होगा ये हमारे लिए, इसलिए हमें निर्भय होना ही है। मोह के पेपर सबसे ज्यादा आएंगे, जो मनुष्य को मानसिक रूप से बिल्कुल विकलांग कर देंगे, मोह केवल बहनों भाइयों माताओं में नहीं, भाइयों में भी होगा। जिस चीज को भी हमने मेरा कहा है उससे मोह होता ही है, चाहे हम हो यहाँ रहते हो, चाहे सेंटर में आप रहते हो, घरों में रहते हो। एक पेन भी जेब में है ना, अच्छा सा ले लिया है 500 रुपए का, उससे भी मोह हो गया क्योंकि वो मेरा पेन है। और कभी न मिले तो आप जानते हैं क्या होता है, देहधारी लोग सभी शरीर छोड़ेंगे, सबको जाना होगा, मोह में आत्माएं पागल जैसी हो जाएंगी। ध्यान देंगे और विचार करेंगे हमारा मोह कहाँ है। कभी बाबा ने ये भी कहा था कि मनुष्यों से तो मोह छूटता छूट जाता है, लेकिन पदार्थों से मोह बहुत रह जाता है। मैं एक बात गुहे हंसी खुशी की भी और गहरी भी आप सबको कह दूं, जब जय जयकार होगी, संसार की अथाह धन संपदा आपके पास आएगी। बाबा हम मधुबन निवासियों को इस बारे में बहुत सावधान करते थे, कोई सावधान हुए कोई नहीं हुए, कि जब संसार की धन संपदा तुम्हारे चरणों में आएगी, तुमने यदि उसे स्वीकार किया तो तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी, क्योंकि वो सब चीजें जाएंगी, फिर एक दो साल के लिए हमारे पास आएंगी, फिर हमें छोड़ के जाएंगी, एक दो साल में वो चीजें हमारी हो गई और फिर हमें उन्हें छोड़ना पड़ेगा, तो आत्मा कष्ट पाएगी, स्थिति बिगड़ेगी। इसलिए बाबा ने कहा, कभी अभ्यास करेंगे सभी, सब कुछ तेरा। एक साकार मुरली है जिसमें राजयोग की डेफिनेशन ही बाबा ने ये दी, राजयोग माना मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा। बहुत प्रैक्टिस करनी है इस चीज की, और प्रैक्टिस करनी है, ब्रह्मा बाबा की बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस थी, मुझे तो याद आती है, बहुत बोलते थे बाबा उन दिनों, जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो सब नहीं रहेगा। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे सभी, जो कुछ दिखता है, जो मेरा है, जो तेरा है, जो संसार में आंखों से सब कुछ दिखता है, ये नहीं रहेगा। तैयार करेंगे अपने को, क्या हम छोड़ने के लिए तैयार हैं? छोड़ना तो होगा ही, तो हमारी आंखों में स्वर्णिम युग रहना चाहिए। देखिए ड्रामा तो गतिमान है ना, रील चल रही है, अब रील का समय खत्म हो गया, पहले वो मूवी बनाते थे, रिकॉर्डिंग करते थे, रील होती थी और चलती रहती थी। इस रील के बाद, इस सीन के बाद स्वर्णिम सीन आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, जो ब्राह्मणों से मिस हो गई है। मैं अंडरलाइन कराना चाहता हूं, और यह भी स्पष्ट है कि ब्राह्मणों से मिस हो गई है, क्योंकि और चीजों में आत्माएं ज्यादा लग गई हैं, और वो है ब्रह्मा बाबा की तरह भविष्य का नशा। बाबा तो डांस करते रहते थे नारायण के चित्र को देखकर, श्री कृष्ण के चित्र को देखकर, याद करके। दीदी मनमोहिनी थी तो मैं उनके द्वारा ही समर्पित हुआ था बाबा के समय, तो नेचुरल प्यार रहता है, संबंध रहता है, तो दीदी किचन में आती थी, सुनाती थी। कभी एक बात सुनाती हूँ, मैं अचानक, अभी दीदी ही कारोबार संभालती थी सारा यज्ञ का, उन दिनों उन्हें कंट्रोलर कहते थे, तो कहा मैंने कई बार देखा, अचानक बाबा के कमरे में गई तो बाबा बच्चों की तरह घुटनों के बल चल रहा है, हाथ आगे घुटनों के बल, जैसे बच्चे चलते हैं ना। मुझे देखा, मुस्कुराए, सीधे हुए, कहा बाबा आप क्या कर रहे थे? बच्चे बाबा को नशा चढ़ गया था, मैं ये बूढ़ा शरीर छोड़कर जाकर मिचनू कृष्ण बनूंगा। तो देखो नशा भी ऐसा कि वही स्वरूप बन गया, वो भूल गए कि मैं बूढ़ा हूं, मैं ब्रह्मा हूं। वही स्वरूप नशा इतना जबरदस्त, उस नशे की हम ब्राह्मणों को बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस भविष्य के नशे में, भविष्य के जिस स्वरूप के नशे में हम रहेंगे, वही संस्कार हमारे जागृत होते जाएंगे। संस्कारों को तो हमें जगाना है, वो श्रेष्ठ संस्कार गोल्डन एज के हमारे पास हैं ही, वो हमारे ही हैं। हम उन्हें जल्दी अट्रैक्ट करेंगे कि वो हमारे हैं। तो बाबा की तरह भविष्य का नशा हमें इसे अंडरलाइन करना है। और बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने पिछले कई वर्षों में इसी बात को, पांच स्वरूपों का अभ्यास करो, इन्होंने, हमारे साउंड वालों ने बहुत अच्छी अच्छी क्लिप भी बनाई है पांच स्वरूपों की, बीच में गीत डाले, बाबा के महावाक्य डाले, कल मैंने सुनी, बड़ा मजा आ गया उसको सुन के। पांच स्वरूपों के अभ्यास में पूज्य स्वरूप भी आ जाता है और देव स्वरूप भी और फरिश्ते का स्वरूप भी, इन सब की बहुत अच्छी साधना हम सबको करनी है। दो बातों पर और आप सबका ध्यान खिंचाना चाहता हूं। एक है जो बाबा की मुरली में आता ही रहता है, विनाश को देखना किसका घर नहीं है, सबको पता है मासी का घर नहीं है, कहावत है ये, यानी विनाश इतना जटिल होगा कि उसको देखना भी कठिन होगा। और दूसरा, स्थिति अचल अडोल निर्भय, तो मन के हमें मालिक बनना है। और बहुत सुंदर चीज आप में से बहुत भाई बहने करते हैं, सबको करना है, जैसे ये संसार ग्रह युद्धों की चपेट में आएगा तो हमें विशेष रूप से जरूरत होगी, निर्भय तो बनना ही है, लेकिन बाबा की मदद की, बाबा की टचिंग और कैचिंग की बहुत जरूरत होगी। अगर कहीं गड़बड़ होने वाली है, हम घर से निकल रहे हैं, तुरंत बाबा रोकेगा, नो जाओ नहीं। लेकिन अगर हमारे पास कैचिंग पावर नहीं है, अगर हमारा मन कहीं भी उलझा हुआ है, तो हम निकल जाएंगे, फिर कहेंगे कुछ हुआ तो था जब घर से चले थे, संकल्प तो आया था अभी न जाऊं। तो बाबा की टचिंग और कैचिंग और बाबा की मदद के अनुभव बढ़ाते चलना है। जो नए भी भाई बहने हैं, चाहे यहां हैं चाहे बाहर हों, बाबा का आह्वान, बाबा की उपस्थिति का आभास, बाबा की मदद के अनुभव बहुत ज्यादा प्राप्त करने हैं। इसलिए भगवान हमारा साथी है। और ऐसी अपनी नेचर बना लें कि कहीं भी कभी भी कुछ भी हो, पहला ध्यान बाबा की ओर जाए, आ जाओ। इतने जुड़ जाएं हम उससे कि और कुछ याद करने की बजाय आ जाओ। जैसे आजकल अचानक का खेल बहुत चल गया है, अचानक मृत्यु, अचानक हार्ट फेल, आप में से जो कोई डॉक्टर बैठे हो जानते हैं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ले लिया है अपने संज्ञान में इसको कि अचानक हार्ट अटैक क्यों होने लगे युवकों को, कोरोना का इफेक्ट हुआ है या दवाइयां वैक्सीनेशन का इफेक्ट हुआ है, क्या हुआ है कि अचानक ब्लड गाढ़ा हुआ, अटैक हो गया। तो ये अचानक का खेल भी बहुत चलेगा। मान लो आप बैठे हैं एक भाई का उदाहरण देता हूं। वो ज्ञान में ऑफिस से आया, परिवार ज्ञान में बच्चे को कहा बेटा पानी दो जरा, और लड़का छोटा पानी गिलास लेकर आया और पानी गिलास पीते ही ऊपर। अब उसकी मनोस्थिति उस बीच के एक मिनट में क्या थी ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन हमें ऐसी प्रैक्टिस हो। मान लो हार्ट में कुछ होने लगा, थोड़ी फीलिंग तो होगी ना, हार्ट अटैक है तो नहीं ऐसे हो गया, कुछ दर्द होगा, कुछ फीलिंग होगी, तो हम सुप्रीम सर्जन को याद करें, बुला लें, बाबा अब मैं आपके पास आ रही हूं, आ रहा हूं, आप लेने के लिए खुद आ जाओ। दो काम होंगे, या तो सुप्रीम सर्जन हमें ठीक कर जाएगा, नहीं तो उसके साथ जाएंगे सर्वश्रेष्ठ गति, सर्वश्रेष्ठ गति के भगवान स्वयं लेने आ जाए। उसको देर नहीं लगती, हमने याद किया और वो आ गया। ऐसा ही दिखाई देगा, बाप दादा पुष्पक विमान लेकर आ गए हैं, आओ बैठो। लेकिन सर्वश्रेष्ठ मृत्यु है ही स्मृति स्वरूप होकर देह छोड़ना। अचानक देह छोड़ देना वो है तो अच्छी मृत्यु, पर सर्वश्रेष्ठ मृत्यु नहीं। ये बाबा के महावाक्य हैं। तो हम ऐसी प्रैक्टिस करें कि कुछ भी होता है बाबा को बुला लिया, उसकी मदद ले ली, उसका आना या उसको याद करना ही उसकी बहुत बड़ी मदद को प्राप्त करना है। गृह युद्धों में अनसर्टेनिटी हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा कब कहां क्या हो जाए। दो चीजें ये ऐसी होंगी, शुरू तो हुआ है इस साल बहुत अर्थक्वेक्स, भूकंप, प्राकृतिक प्रकोप, जहां तहां धरती हिलती रहती है, लेकिन अभी स्केल 4.5, 5, कहीं कहीं 6 तक भी गया है। थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन लोग भयभीत बहुत हो जाते हैं। जिस दिन ये बड़े स्केल पर आने लगा, आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो बाबा सिखाया करते थे, साकार में बाबा बहुत सिखाते थे, और दादियों को तो बहुत ट्रेनिंग दी थी कि मान लो तुम हो अंदर हॉल में बैठे हो और धरती हिलने लगे तो भाग दौड़ न करो, तो क्या करें? मनुष्य तो भाग दौड़ ही करेगा ना बचने के लिए, लेकिन बाबा कहते थे भाग दौड़ न करो, योग युक्त हो जाओ। इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत तो है ही। योग युक्त हो जाओ तो देखो, उस टाइम तो बाबा इतना बड़ा ज्ञान नहीं देते थे, बाबा यही कहते थे योग युक्त हो जाओगे तो तुम सुरक्षित हो जाओगे, लेकिन योग युक्त होते ही प्रकृति शांत हो जाएगी। और अगर मान लो भयानक ही रोल चल रहा है प्राकृतिक प्रकोप का, तो हम योग युक्त होकर शरीर छोड़ेंगे, हमें कोई कष्ट ही नहीं होगा। नहीं तो कोई लोग बीच में दब गए, जैसे आप सुनते हैं बड़ी बिल्डिंग गिर गई, कोई व्यक्ति 10 दिन के बाद निकल रहा है, उसका मानसिक हाल कितना बुरा हो गया है, कोई व्यक्ति 3 दिन के बाद निकाला जा रहा, बेहोश है, कष्ट पाया है 3 दिन बहुत ज्यादा। तो हम सभी को इन चीजों की तैयारी कर लेनी है। बातें इसमें बहुत हैं, लेकिन सभी इस पर बहुत अच्छी तरह विचार करके अपनी स्थिति को निर्भय और विशेष रूप से अभी से एक्सेप्टेंस स्वीकार करना। बहुत चीजें ऐसी हो रही हैं और परिवर्तन काल में होंगी, जिनको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी मनुष्य के चाहने से कुछ नहीं होगा, जो होना है जो ड्रामा में है, जो होना है युग परिवर्तन के लिए वही होगा। इसलिए पहली इम्पोर्टेंट धारणा रखेंगे स्वीकार करना। स्वीकार करने से बहुत हल्के हो जाएंगे, बहुत हल्के हमें रहना ही है। भाई लोग परिवार वाले बैठे हैं, परिवार वालों को कष्ट होने लगा, अब हल्के कैसे रहेंगे, साक्षी कैसे होंगे। साक्षी तो हाईएस्ट स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, हमारे रूहानियत की सबसे ऊंची स्थिति साक्षी भाव है। साक्षी भाव में मनुष्य को सब चीजों से डिटैच होकर ऊपर पूर्वज की स्थिति में आना होता है। हल्के होने की प्रैक्टिस करें। बाबा ने बहुत अच्छी चीजें पढ़ाई हैं हमें, आप सबको याद हैं वो चीजें, मैं याद दिला देता हूं एक दो। मन के सारे बोझ क्या करो, बाबा को दे दो। कुछ लोगों को आदत है न खुद संभाल पाते न देते, हमारा माल हम क्यों दें, बोझ को माल समझते हैं। दूसरा बाबा ने कहा मेरे को तेरे में बदल कर, फिकर बाप को देकर फकुर ले लो और बन जाओ, बोलो बन जाओ बेफिक्र बादशाह। इनकी बहुत लंबी प्रैक्टिस की आवश्यकता है और ये बात बहुत पक्की कर देनी होगी कि सबको जाना है। बाबा की वो बात अच्छी तरह से याद करनी होगी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम जाना चाहो या मैं तो लेकर जाऊंगा, तुम नहीं चलोगे तो। अब थोड़े खराब शब्द बोल देता है बाबा, धमकी दे देता है मार पीट के, तुम्हारे शरीरों को आग लगाकर, बहन जी को बहुत याद है, आग लगाकर तुम्हें पावन करके ले जाऊंगा। वो तो बाबा हंसी मजाक करते हैं, आग लगाना माना प्योरीफाई कर देना, पवित्र कर देना। तो याद रखना होगा कि हमें सबको, हमारे भी जो हैं, आप अपने पांच सात के परिवार को सामने लाकर देखेंगे, इन सब आत्माओं को जाना है। सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। तीन बातें याद रखेंगे दूसरों के लिए, सर्वात्माओं का अपना अपना पार्ट है, इन सब का भाग्य भी अपना अपना है और कर्मों की कहानी भी अपनी अपनी है। आपका वो बहुत प्यारा बच्चा, लेकिन कर्मों की कहानी तो उसकी अपनी है। शिविर में एक परिवार आया हुआ, मेरे से मिलने आए परसों, पांच सात लोग थे, बच्चे ने, 10 साल के बच्चे ने शरीर छोड़ा कैंसर से। अब ज्ञान में मां थी, बाप नहीं था, बच्चा भी ज्ञान में था, बहुत अच्छी स्थिति में रहा, बहुत अच्छी स्थिति। वो परिवार को याद दिलाता था मम्मी चिंता ना करो मैं ठीक हो जाऊंगा। लास्ट दिन याद दिलाया, बाबा आया है मेरे पास और कहा है संसार को कुछ भी हो जाए तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो ये माता को पक्का हो गया था, लेकिन उसने शरीर छोड़ दिया तो माता जी दुखी। बाबा में संशय चिंताएं तो प्रश्न पूछने आई थी बहुत सारी, बाबा के होते भी ये सब क्यों हो गया। इस प्रश्न की आवश्यकता नहीं, बाबा तो आया ही है ले जाने के लिए। बाबा ये नहीं कहेगा कलयुग चलता ही रहे, सब आत्माएं दुखी होती रहें, पाप बढ़ता रहे, ये सब नहीं, समाप्त हो और देवताओं की दुनिया आए जिसमें संपूर्ण सुख शांति हो, प्रेम हो, सम्मान हो, अपनापन हो, अथाह धन धान्य हो। तो हम सभी इन चीजों की बहुत अच्छी तैयारी करेंगे अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए। बहुत ध्यान देंगे साक्षी भाव और अचल अडोल निर्भय स्थिति। खुद अपना प्लान बनाएं, अभी से छोटी बातों में हम अचल अडोल होंगे तो विनाश को देखने में भी अचल अडोल हो जाएंगे। सबको विदाई देंगे और हम में से कुछ आत्माओं को महान कार्य करने हैं। आप अपना पार्ट खुद बनाएंगे भविष्य का। मैं आपको वो बात भी सुना देता हूँ जो बाबा ने कुछ आत्माओं को देखकर कही है, वो सबके लिए नहीं है। सबके लिए तो ये है घर चलना है, लेकिन कुछ आत्माओं को इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करना है। उनको कहा जब तक तुमने ब्राह्मण पन के कर्तव्य पूरे नहीं किए तब तक तुम घर नहीं जा सकोगे। तो हम में से कुछ आत्माओं का ऐसा भी पार्ट है जो सबको विदाई देंगे, जाने में मदद करेंगे, बहुतों को मुक्ति का वरदान देंगे, घर जाने में मदद करेंगे, दे आराम से छूटे। इसलिए अब मैं आपको लास्ट बात कह रहा हूं व्यर्थ से अपने को मुक्त करके और झंझटों से मुक्त करके। थोड़ा ओपनली बोल देता हूं, यदि आप मान शांत के पीछे दौड़ रहे हो मुक्त हो जाओ उससे। बाबा ने बहुत अच्छी बात कभी कही थी, बच्चे तुम्हें तो स्वयं भगवान मान दे रहा है, मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे। मुझे याद है तब की ये बात। तो जो मान शांत से अपने को ऊपर निकाल दे उसको संसार में सबसे ज्यादा मान मिलेगा, संसार मान देगा। जैसे बाबा ने एक बहुत पावरफुल बात कही हुई है, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे एक दिन आएगा संसार उनके चरणों में झुकेगा। यह होगा सबसे बड़ा मान जो संसार की सभी आत्माएं देंगी। अभी हम लोगों की सेवा करने के लिए उनके पास जाते हैं, चाहे मिनिस्टर्स हों, वीआईपी हों, और फिर हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आत्माएं खींच खींच कर हमारे पास आ जाएंगी, ग्लानी करने वाले फूल चढ़ाएंगे। तो कहीं भी किसी इच्छा ने आपके पुरुषार्थ को रोक लिया हो, कोई इच्छा कोई बात आपकी खुशी को आपसे छीन रही हो, कोई बाधा अपने ही संस्कारों की बाधा आपको आगे न बढ़ने दे रही हो, उसको इस मीटिंग में रियलाइज करके छोड़ने का लक्ष्य कर लो। मुझे बड़े बड़े काम करने हैं, बोलो करने हैं या नहीं, बड़े काम करने हैं। मान सम्मान तो बहुत मिलने वाला है। कई लोग मेरे से जो समीप हैं यज्ञ में पूछा करते हैं, मैं एक उत्तर देता हूं उन्हें कि ब्रह्मा बाबा को भविष्य का इतना जबरदस्त नशा था कि मैं विश्व महाराजन बनने वाला हूं, था ना। अगर बाबा को कोई ऑफर देता कि बाबा आओ इस कंपनी का चेयरमैन बन जाओ, तो बाबा को कैसा लगता सोचो। विश्व महाराजन पद छोड़कर जिसमें प्रकृति का मैं स्वयं मालिक होऊंगा, चेयरमैन बनूं। किसी को कहा जाए डायरेक्टर बन जाओ, अरे भाई डायरेक्टर से बहुत ऊंचा है हमारा स्वमान। इसलिए इन चीजों के पीछे न भागकर मुझे महान कार्य करने हैं, मुझे संसार को बहुत कुछ देना है, मुझे समय की डिमांड पूरी करनी होगी। समय नाजुक भी आ रहा है, सुंदर भी आ रहा है। मेरे पास ऐसी ऐसी खास माताएं, कोई कोई कुमार आ जाते हैं जिन्होंने दुखों के कारण, मानसिक रोगों के कारण अपने को जैसे जिंदा ही डेड कर दिया है, जिनकी चेतना जैसे गायब हो गई है, वो कुछ नहीं कर सकते। एक युवक आया 8-10 दिन पहले, MBBS किया हुआ, मेरे से पूछा, माँ साथ थी, मेरे से पूछा कि मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे में बहुत अलबेलापन है। मैं देखा उसका चेहरा तो डल था, मैंने पूछा क्वालिफिकेशन क्या है, पता है MBBS हूँ। मैंने कहा अच्छा, सवेरे उठ के ये लिखा करो, कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो। कहा सोता हूँ सवेरे 7:30 बजे। अब मैंने उठने का नहीं पूछा, मैंने कहा क्यों, अभी क्या बताए, माँ भी साथ है और भी 4-5 लोग थे। मैंने कहा मैं ही बता दूँ क्यों, शायद रात नेट पे रहते होंगे कि हाँ यही है। अब नेट ने उसके चारों ओर ऐसा नेट बुन दिया कि उसकी MBBS की पढ़ाई यूजलेस हो गई। कितनी बड़ी गलती कर रहा है वो, जीवन बिल्कुल, बुद्धि एकदम डल होती जा रही है, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। मैंने उसकी माँ को समझाया, एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोल दो इसे, अगर इसको एक्टिव करना है, 5% भी आ गए तो विचार करेगा, बुद्धि काम करेगी, एक्टिव हो जाएगा, नहीं तो इसका हाल तो बिगड़ता जा रहा है। तो हमें इन सब चीजों से बचकर महान कार्य करने के लिए अपने को खड़ा करना है। बोलो तैयार हैं आप इसके लिए, महान कार्य करने हैं। अब बाबा तो साक्षी हो जाएगा, बाबा ने कह दिया था जब परीक्षा होगी तो बाबा अब है साथी और तब होगा साक्षी। हमें भी उसकी तरह साक्षी होकर उसके साथ के अच्छे अनुभव करने हैं। इन बातों पे विचार करना, और भी बहुत सारी बातें हैं वो आपके पास आती रहेंगी। बहुत अच्छी तैयारी कर लेना, बहुत सुंदर पार्ट प्ले करना है, अपना पार्ट फिक्स करना आज ही सोच लेना अच्छी तरह, और जो पार्ट मुझे प्ले करना है उसकी ओर मुझे कैसे कैसे बढ़ना है, इसकी एक सुंदर प्लानिंग भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
प्यार के सागर
शांति। समय की पुकार, हो जाओ तैयार। इस सेकंड प्रोजेक्ट पर आदरणीय भाई जी के द्वारा हम सबको बहुत सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अगर इसको एक ही लाइन में अगर हम ले तो भाई जी ने जो कहा कि डरना नहीं है लेकिन तैयारी करनी है। कौन सी तैयारी करनी है, किस प्रकार तैयारी करनी है, बहुत सुंदर स्पष्ट शब्दों में आदरणीय भाई जी ने हम सबको मार्गदर्शन किया। हम सभी भाई जी को तहे दिल से एक हाथ की ताली से धन्यवाद करते हैं। भाई जी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, थैंक्स है। भाई जी के लिए कहना चाहेंगे क्योंकि भाई जी के नाम में ही सब कुछ समाया हुआ है। संसार की सभी आत्माओं की परेशानी सेकंड में दूर कर समान में स्थित करने वाले, रोतों को हंसाने वाले और जहान को खुशनुमा बनाने वाले हमारे आदरणीय भाई जी को फिर से दिल से धन्यवाद।
ओम शांति। लगातार 3 वर्षों तक फॉलो फादर प्रोजेक्ट करने के बाद, फॉलो फादर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही हमें कुछ करने के विचार थे, जैसे अव्यक्त फरिश्ता स्थिति हम बाबा के समान बनाएं, या योग के गहन अनुभव प्रयोग और साथ ही उसकी अनुभूति, ऐसे अनेक विषय मन में थे, सामने थे, जो फॉलो फादर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही हम करते हुए आगे बढ़ें ऐसा विचार था। लेकिन भाई साहब का तीव्र संकल्प था कि हम इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही, फॉलो फादर के अंतर्गत ही आने वाले समय की तैयारी इस विषय को लें, क्योंकि अब समय इस चीज की मांग कर रहा है। दादाजी ने उन बातों को आपके सामने बहुत ही सुंदरता से रखा है कि हम क्या क्या करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट में। विशेष तो अपनी सुंदर तैयारी, दोनों बातों को लेकर के कार्य करने का विचार था कि आने वाले हाहाकार और जय जयकार के लिए स्वयं को तैयार करना और औरों को अर्थात अपने ब्राह्मण परिवार को तैयार करना। तो इसके अंतर्गत हाहाकार की स्थिति का ज्यादा जिक्र भाई साहब ने नहीं किया, लेकिन जो बाबा ने अलग अलग पेपर्स कहे हैं आने वाले समय में जो हम सबको देने हैं, उनकी तैयारी भी बहुत बहुत आवश्यक है। तो जो पेपर्स बाबा ने कहे हैं उनके लिए भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम अपनी तैयारी रखेंगे, जिसमें बाबा ने विशेष कहा है चाहे वो शारीरिक बीमारियां हैं, कर्म भोग हैं, पुराने स्वभाव संस्कार जिसका जिक्र भाई सब कर रहे थे कि विकार और विकर्म दोनों ही जागृत हो जाएंगे, ऐसा समय आ गया है, आने वाला है। साथ ही प्रकृति द्वारा जो पेपर्स हैं और इनके लिए क्या अभ्यास करने हैं ये बाबा ने भी बताए हुए हैं। तो लक्ष्य यही है कि जो चीज आने वाली है, हमेशा मनमोहनी दीदी जी कहा करते थे कि एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो फाइनल पेपर से पहले स्वयं ही अपने आप की पेपर लेता है और उस फाइनल पेपर के लिए स्वयं को तैयार करता है। हम सब त्रिकालदर्शी बाबा के त्रिकालदर्शी बच्चे हैं, जानते हैं कि आने वाला समय क्या है और बाबा के ज्ञान से भी स्पष्ट है, तो क्यों ना उसकी तैयारी अभी से हम करते चलें। ऐसे ही बाबा ने कहा कि माया अर्थात पांचों विकारों के पेपर अलग अलग रूपों में, साधनों के अभाव, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, इनके द्वारा भी अलग अलग पेपर्स, या फिर भटकती आत्माओं के पेपर जिनका जिक्र अभी हुआ, ये सारी चीजें जो होनी है, इसे तीन तरह से करने का विचार है कि इनसे किस किस प्रकार के पेपर, ये सारे बहुत विस्तृत हैं, लेकिन किस किस प्रकार के पेपर इनसे आ सकते हैं, इन पर हम गहराई से चिंतन विचार विमर्श करते हुए कुछ एक सुंदर प्रारूप सबके सामने रखेंगे। अपनी गहरी चेकिंग की इन सब के लिए मैं कितना तैयार हूं, यदि वर्तमान समय ये पेपर मेरे सामने आ जाता है मैं अपने आप को कितना प्रतिशत दे पाऊंगा या कितने परसेंट मार्क के साथ मैं पास हो पाऊंगा, और यदि इतना ही प्रतिशत है तो अब मैं क्या और कैसी तैयारी करूं, अर्थात मेरे वो पुरुषार्थ का एक पार्ट होगा। तो ये हाहाकार वाली बात रही जिन पेपर्स की बात बाबा ने कही है, बड़े बड़े भी हैं, छोटे छोटे भी, रोज दिनचर्या में जो बातें आती रहती हैं उनकी तैयारी पर भी हम सब विशेष प्रकाश डालेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन जय जयकार की भी जो चीजें हैं वो साथ साथ लेंगे, जिसकी बात भाई सब कह रहे थे। जैसे एक बार बाबा ने कहा है कि अभी तो तुम केवल अपने विकर्मों को विनाश करने के लिए योग लगाते हो, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें अन्य आत्माओं के विकर्मों को नष्ट करने के लिए भी योग लगाना होगा। तो इसके लिए हम कितने प्रिपेयर हैं, अपने ही विकर्मों को कितना विनाश कर पाए हैं जो औरों के लिए हम तैयार हो पाए। तो ये भी एक हमारे पास एक सुंदर विषय है कि हम कैसे अपने आप को उसके लिए तैयार करें। बाबा कहते हैं कि मुक्ति देने के लिए कितने तैयार हो जो भटकती आत्माएं हैं, तुम ही विघ्न हरता हो तो विघ्नों को हरने के लिए कितने तैयार हो, मास्टर दुख हरता सुख करता हो तो दुख हरकर सबको सुख देने के लिए कितने तैयार हो, या इष्ट बन करके सबको वरदान देने के लिए हम कितने तैयार हैं, साक्षात्कार मूर्त बन करके सबको साक्षात्कार कराने के लिए कितने तैयार हैं। तो अपने पेपर के साथ साथ ये जो एक पॉजिटिव पहलू है जिसके लिए बाबा हमें कहते हैं कि इसकी तैयारी, फोकस इस पे ही हमारा ज्यादा होगा कि हम अपने आप को इस रूप के लिए कैसे तैयार करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसके लिए जो अलग अलग चीजें हैं, चाहे वो कमेंट्रीज हैं, चार्ट है, बाबा के इससे जुड़ी हुई अव्यक्त मुरली है, और इन्हीं से रिलेटेड विशेष कुछ क्वेश्चन पेपर भी तैयार करने का विचार है, जिनके आधार पे हम अपनी अच्छी चेकिंग कर सकें। एक क्वेश्चनर भी तैयार किया गया है जो भी आप लोगों को दिया जाएगा, जो हम प्री और पोस्ट हमेशा ही करते हैं, और इसके अलावा इन्हीं विषयों पर कुछ सुंदर क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखे जाएंगे। लेकिन विशेष करके एक सामूहिक चर्चा लेन देन हम जूम या यूट्यूब के माध्यम से करते रहेंगे, और इसके साथ साथ योग जो बाबा के विशेष महावाक्य हैं उनमें से एक चीज पर फोकस करने का विशेष विचार है। बाबा ने कहा कि समय प्रमाण अब साधना का वायुमंडल बनाओ, योग का वायुमंडल। और हम जानते हैं कि योग के लिए बाबा ने यह कहा है कि जो याद में रहेंगे विनाश काल में उनके कदम वहीं जाएंगे जिधर सेफ्टी होगी, और साथ ही ये भी बाबा ने कहा कि याद में रहने वाली आत्माएं विनाश काल में विनाश नहीं होंगे, लेकिन वो स्व इच्छा से ही अपने देह का त्याग करेंगे। तो साधना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हमारी तैयारी के लिए। तो इस साधना पर अर्थात योग पर, उसकी विविध अवस्थाओं पर, उसकी गहराई पर, उसकी अनुभूति पर, उसके प्रयोग पर विशेष करके फोकस किया जाएगा। साथ ही बाबा ने कहा है कि समय की पुकार है तीव्र पुरुषार्थ करना, अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को हम निरंतर आगे बढ़ाते चलेंगे। और साथ ही बाबा का एक और बार कि समय प्रमाण अब लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। तो अलग अलग सुंदर राइमिंग भी की गई है, जैसे समय की पुकार लगाओ अपनी दरबार, समय की पुकार करो गुणों और शक्तियों से श्रृंगार, समय की पुकार बन जाओ निराकार, या समय की पुकार हो जाओ बलिहार। इस प्रकार की सुंदर राइमिंग के साथ भी हम लोग, चाहे वो वीकली है, फोर्टनाइटली है, मंथली है, विविध प्रकार के जो चार्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, बाबा के महावाक्य हैं, पुरुषार्थ के बिंदु हैं, वो व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप सब इस प्रोजेक्ट में आमंत्रित हैं कि हम सब मिल करके अपने आप को संपूर्ण रूप से तैयार करें और बाबा की जो आश है उस आश को पूर्ण करें, प्रत्यक्षता के लिए भी, अपनी और सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए भी। क्योंकि जितने हम तैयार होंगे, जितने हम मुक्त होंगे, उतनी ही अन्य आत्माओं को जल्दी से जल्दी मुक्ति दे पाएंगे। आदरणीय अंबिका दीदी हमेशा एक बात याद दिलाती हैं, मुझे वो बात भी बहुत अच्छी लगती है, कि संसार में जितनी दुख और अशांति है, बाबा ने ही कभी कहा है आत्माएं जो तड़प रही हैं तो उसके कारण तुम हो, क्योंकि तुम तैयार नहीं हुए हो, तुम ही मास्टर दुख हरता सुख करता हो। यदि तुम तैयार नहीं हुए हो तो दूसरों को कैसे तुम दुखों से मुक्त करोगे, तो इसलिए तुम उनके कारण हो। तो हम कितनी बड़ी जिम्मेवारी अपनी समझते हुए अपने आप को तैयार करेंगे और जल्दी से जल्दी बाबा जो चाहते हैं इस संसार में स्वर्ग लाना, सब आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति देना, वो मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। एक मिनट बाबा को याद करके उठेंगे।
मन को लुभाए तुझे।